कौन सा स्पीकर नहीं ऊपर मिल गया हमारा? बंद ना करीस, सिद्धू मिले स्पीकर
बोले नहीं कुछ
ना चाचा मिले हुआ तो स्पीकर नहीं ऊपर मिल
अब बोल से ला दें थी तुम तुम्हारा डेरिंग मार नहीं
हजरत को हर साल इज्तिमा में थोड़ी देर के लिए बुलाते हैं और आपसे थोड़ी बात होती है, आपको पता है ये हर साल आपकी मजलिस होती है, आपको पता है ये। आप में से पहले कौन कौन इस मजलिस में आया है असर के बाद की? माशाल्लाह, ये तो बहुत बड़ा मजमा आया हुआ है, बहुत अच्छी बात है। तो आप हजरात से हर साल यहाँ थोड़ी बहुत बात होती है, जो नए बच्चे आए हैं उनको नहीं पता होगा, उनके लिए ये चीज़ नहीं होगी, है ना? स्टूडेंट के लिए जो नए बच्चे आए हैं, जो गुज़िश्ता इज्तिमा में शरीक नहीं हुए, उनके लिए आज के मजलिस नहीं होगी। और उनके जहनों में ये सवाल होगा कि हम लोगों को यहाँ क्यों बुलाते हैं। बोलो, ऐसा सवाल है? आप पहले आए हो? अच्छा, पहले कौन कौन नहीं आए इस मजलिस में, ज़रा उठाओ। जो नए आए हैं आज पहली बार, बताओ। अच्छा खासे बच्चे हैं। आप हजरात को ये सवाल होगा, ये जहनों में होगा कि हम लोगों को यहाँ क्यों बुलाते हैं, और होना भी चाहिए ये सवाल। लेकिन बात ये है कि आपको हम कोई खाली दो चार बातें सुनाने के लिए हम आपको नहीं बुलाते हैं। फिर बुनियादी बात यह है कि हमारे नबी अलैहिस्सलाम के दीन में इस उम्मत के सारे तबकों के लिए हमदर्दी है। जितने मजमे इस उम्मत के हैं, तबके हैं, वो सारे तबकों के लिए हमदर्दी है। उसी हमदर्दी के पेश नज़र मुख्तलिफ तबकों को मुख्तलिफ मौक़ों पर बुलाकर उनसे दुआ सलाम, खैर खैरियत, उनसे कुछ बात करना होती है। हमारे नबी ने फरमाया, दीन व नसीहा, दीन खैर खाई का नाम है। और फिर फरमाया किसके लिए? लिल्लाहि व लिरसूलिही व लिउम्मतिल मुस्लिमीन व लिअइमतिहिम, इनके छोटों के लिए, इनके बड़ों के लिए, और इनके पढ़े लिखे और अनपढ़ सारे मजमों के लिए इस दिन में खैर खाई है। तो आप देखें कि हुज़ूर अलैहि सलाम के ज़माने में जितने तबके होते थे, सारे तबकों के पास हुज़ूर का जाना होता था। काफ़िले आते थे, काफ़िले वालों के पास बैठना होता था। अब हुज़ूर अलैहि सलाम तो हमारे दरमियान में नहीं है, तो ख़त्मे नबूवत की जो हमारी मेहनत है, उस मेहनत के सदक़े से कोशिश इसकी करते हैं कि जितने दुनिया में तबके हैं सबकी हमारे नबी के दिन में हमदर्दी खैरख्वाही है, तो सबके पास पहुँचना हो जाए। तो और जितने तबके हैं आपको पता होगा कि उनसे भी बात करना होती है। सुबह माशाल्लाह उलमा की मजलिस हुई थी, सुबह में एक शहर के खवास की मजलिस हुई थी, मस्तूरात की मजलिसें होती है, और जैसे सारे तबके हैं ऐसे एक तबका आपका भी है, असरी उलूम को पढ़ने वालों का, स्टूडेंट्स का तबका है। आप अपने आप को ऐसा समझते होंगे कि हम कौन हैं, हम स्कूल पढ़ने वाले बच्चे हैं, आप ऐसा समझते होंगे। बोले, इतना ही समझते हो या उससे आगे भी कुछ समझते हो? का आपकी बात इतनी नहीं है कि आप खाली असर उलूम को पढ़ने वाले बच्चे हो, इतनी बात नहीं है। फिर क्या बात है? तो उससे बहुत आगे बात है। ये जो असर उलूम पढ़ने वाले तलबा होते हैं, माशाल्लाह, अक्सर वो बाशऊर होते हैं, समझबूझ वाले होते हैं, और आगे जाकर कौम उनको बड़ा बना देंगे, समाज के लोग उनको बड़ा बनाते हैं। हाँ, ये हजरात आगे जाकर कौम के पेशवा बनते हैं, लीडर बनते हैं। अब हजरात को अपने इस बचपने में ये बातें समझ में नहीं आएगी, लेकिन जब तुम नक्शा देखोगे, ज़मीनी नक्शा, तो इसकी हकीकत तुम्हें पता चलेगी। हमारा गोधरा जो शहर है, गोधरा शहर, हमने देखा, अब ये तो उलमा और ये सब अब पैदा हुए, वरना हमारे जितने मस्जिदें हैं उसके मुतवल्ली पढ़े लिखे लोग, जितने मदरसे हमारे मकतब है वो सब के मैनेजमेंट में कौन है? एजुकेटेड लोग, सारे के सारे। क्या कौम के पास और कोई सरमाया ही नहीं था? तो सरमाया कौन है? कि यही लोग है, पूरे पूरे समाज को ये लोग चलाते हैं। हाँ, हम भरूच ज़िले में गए तो हमने भरूच ज़िले में देखा कि होटलों पर बैठ कर लोग स्कूलें चलाते हैं, पूरी पूरी हॉस्पिटल्स चलाते हैं, सामाजिक बड़े बड़े काम ये लोग करते हैं। तो कौम इन लोगों को अपना बड़ा बना देती है, अपना पेशवा बनाती है। इसलिए अली मियां नदवी रहमतुल्लाह एक बात कहते थे कि जिस कौम को बनाना हो उसके जवान को बना लो, कौम बन जाएगी, और जिस कौम को गाड़ी से पटरी से उतारना हो उस कौम को के जवानों को हाथ में ले लो, उस कौम के जवान आपके हो गए तो आइंदा वो आपके ही हो जाएंगे। जवानी जो होती है, जवानी वो पागलपना होता है, पागलपना। हदीस में आता है शबाब शुअबतुन मिनल जुनून, के जवानी दीवानगी होती है, दीवानगी। आपने दीवानी लोगों को देखा है, पागल लोगों को? पागल लोग पता नहीं कैसे कैसे हरकतें कर डालते हैं। ऐसे अगर दीन का शौर जवान को ना हो तो वो भी दुनिया में पता नहीं क्या क्या चीज़ें कर डालते हैं, छा जाते हैं लोगों पर, छा जाते हैं, बोला होता है ना सब। इसलिए आप हजरात पर मेहनत होती है, बातिल की भी आप पर मेहनत होती है, शैतान की भी मेहनत होती है। अगर ये बचपन में जिस रुख पर परवान चढ़े, ये बचपन में उसी रुख पर परवान चढ़ते चढ़ते आगे बढ़ेंगे, इनकी जो विचारधारा होगी, इनकी जो सोच होगी, जो इनके जज्बात होंगे, पूरे पूरे सब चीज़ों को ये लेकर चलेंगे। इसलिए आप हजरात को बहुत अहतमाम से यहाँ जोड़ते हैं, और जोड़कर आपको आपकी ये हकीकत समझाने की कोशिश की जाती है। क्योंकि हमें ये बात इसलिए समझ में नहीं आई होती कि हम बचपने में होते हैं, चाहे हम पढ़ते पढ़ते 25 साल के हो जाएं, लेकिन जब तक हमारी पढ़ाई पूरी नहीं होती हम अपने आप को बच्चा ही समझते हैं। क्या समझते हैं? हाँ, अगर 20 साल की उम्र में डिग्री मिल जाए तो हम ये समझते हैं हाँ अब मैं बड़ा हुआ, वरना अगर डिग्री ना मिले या हमें हमारा सर्ट ही ना मिले तब तक अपने आप को हम किस एहसास में रखते हैं, मैं स्टूडेंट हूँ, मैं स्टूडेंट हूँ, मैं स्टूडेंट हूँ। हालांकि जितनी इसकी उम्र हुई है, जो बच्चे पढ़ाई नहीं पढ़ रहे हैं वो इसकी इतनी उम्र के बड़े बड़े कारोबार दुनिया में करने वाले बन जाते हैं। वो अपने आप को जिम्मेदार समझते हैं, कब मैं जिम्मेदार हो चुका हूँ। और जिसको ये एहसास है जिम्मेदारी नहीं होती, वो चाहे कितना भी बड़ा हो जाए वो अपने आप को बच्चे की तरह चलाता है। और जिस वक्त उसको एहसास हो जाता है उसी दिन उसका चलने का रुख बदल जाता है। बताऊँ कैसा रुख बदलता है? हुजूर अलैहि सलाम के ज़माने की एक मिसाल दो, और एक हमारे ज़माने की। हुजूर अलैहि सलाम के ज़माने में एक आदमी, एक बच्चा था, उसका नाम था सलमा इब्ने अकवा रज़ी अल्लाहु अन्हु व अर्दा। उसकी उम्र थी 12 साल। कितने साल? जिसको एहसास ज़िम्मेदारी हो जाता है उसको चलने का रुख कैसा होता है? तो 12 साल का बच्चा था, वो एक जगह से आ रहा था। उसने देखा कि गिद्ध, गिद्ध किसको खाते हैं? मुर्दा जानवर को। तो गिद्ध उड़ रहे हैं, तो उसने देखकर अंदाज़ा किया कि अच्छा गिद्ध उड़ रहे हैं, इसका मतलब कि यहाँ किसी न किसी की लाश या गोश्त पड़ा हुआ है। तो वो तलाश में गया तो देखा कि हुजूर अलैहि सलाम के जो ऊँट चराने के सहाबी, चराने वाले जिम्मेदार सहाबी थे, उनकी उनको किसी ने मारा है। 12 साल के बच्चे का दिमाग आप सोचें कैसा सोच रहा है। अच्छा गिद्ध है, इसका मतलब कि कोई कोई लाश है। ये बच्चा सोच रहा है 12 साल का, इसका दिमाग कैसा काम कर रहा होगा। फिर जाकर देखा तो देखा कि हुजूर अलैहिस्सलाम के ज़माने के आदमी ही है। तो उन्होंने सोचा कि अभी मारा है इसको, और मतलब मारने वाले यहीं कहीं होंगे, कहाँ होंगे, कैसे तलाश करने का। तो इन्होंने फ़ौरन ये देखा कि मारने वालों के पैर तो यहाँ कहीं ना कहीं कदम होंगे, तो उन्होंने देखा कि ऊँट के कदम, घोड़ों के कदम हैं, तो इसका मतलब कि वो इस तरफ गए हुए हैं। ये वो अपना दिमाग लगा रहे हैं। ये जो सलमा इब्न अकवा थे वो इतने माहिर आदमी थे दौड़ने में कि उनको अरबी घोड़ा होता है, अरबी घोड़ा दौड़ने में बहुत तेज, अरबी घोड़ा भी उनको नहीं पकड़ लेता था, इतना तेज वो बच्चा होता है, दौड़ने में बड़े तेज थे। दूसरा वो तीरंदाजी में बड़े सख्त तेज थे, तीरंदाजी इनकी बड़ी तेज थी, कोई मुकाबला नहीं कर पाता था। अब इन्होंने सोचा कि मुझे उन आदमियों के पास जाना चाहिए जिन्होंने ये हरकत की है, लेकिन फिर एकदम ये सोच रहे हैं लेकिन मैं अकेला हूँ, अकेला मैं क्या करूँगा। तो मुझे मेरे साथी, ये कितने साल का बच्चा सोच रहा है, अरे बोलो ज़रा ज़रा, तो अब मुझे क्या करना चाहिए। वहाँ एक पहाड़ी है, उस पहाड़ी पर जब मदीने में कोई हालात आ जावे तो लोग उस पहाड़ी पर चढ़कर लोगों को बुलाते थे, ऐसी आवाज़ देते थे। तो उस पहाड़ी पर वो बच्चा चढ़ा और मदीने की तरफ ज़ोर से आवाज़ दी ताकि लोगों को इनकी आवाज़ सुनाई दे और उसके नुसरत के लिए पहुँचे। आवाज़ तो उसने दे दी, और आवाज़ देकर वो इन घोड़े सवारों के पीछे गया। रिवायतों में आता है उसने तेज दौड़ लगाकर घोड़े सवारों को पकड़ लिया, और पकड़कर देख लिया करीब आ गए, पकड़ लिया मतलब करीब पहुंच गए, और अपने तीर बरसाना शुरू किए, धन 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 धन। तो जब वो तीर बरसाने लगा तो घोड़े सवारों को अंदाजा ये हुआ कि इतने तेज तीर आ रहे हैं, इसका मतलब एक आदमी नहीं है, कितने लोग हैं, ज्यादा है, ये अंदाजा। वो तेज भागे, भागते भागते सलमा इब्न अकवा कहते हैं कि मैंने देखा कि वो अपनी चादरें भी उनसे गिरने लगी, छूट गई। हजरत अली सलाम के जो ऊंट इन्होंने पकड़े थे वो भी पीछे छूट गए और वो आगे निकल रहे हैं। मुझे ऊंट तो मिल गए, उनका सामान भी गिर गया, मेरा दिल फिर भी मुतमिन हुआ, मैं फिर भी पीछे भागता रहा। और तीर बरसाते बरसाते कोई अगर मुझे पीछे मुड़कर देखता तो मैं छुप जाता, या तो किसी दरख्त के पीछे या फिर किसी पत्थर के पीछे, रिवायतों में आता या तो पत्थर या दरख्त के मैं छुप जाता हूँ, उनको दिखाई नहीं देता था। ये कितने साल का बच्चा ये सब चकमा दे रहा है? अरे बोलो, 12 साल का बच्चा। कम इसी तरह चलता गया, इत्तेफाक से एक आदमी ने देख लिया कि ये तो टोला नहीं, कितने आदमी है, और एक आदमी भी नहीं, कौन है? बच्चा है। कहीं में मुझे देखकर हिम्मत आ गई कि ओहो, हमें कौन भगा रहा है, 12 साल का बच्चा भगा रहा है। घोड़े मोड़कर आ गए, तो जैसे ही मेरे पीछे मुड़कर आए तो मैं वापस हुआ और मैं एक पहाड़ी पर चढ़ गया। पहाड़ी पर चढ़ने के बाद मैंने उन सबको नीचे खड़ा करके अपना अपनी ओड़खाण कराई, एक मिनट रुको मेरी बात सुनो, ये कौन कह रहा है? अरे बोलो, हमारा 12 साल का बच्चा चड्डी भी नहीं पहनता। हाँ, वो ऐसे ही घूमता रहता है, ऐसा बच्चा होता है, ये 12 साल का बच्चे के वाकया लिखा है। तो वो कह रहा है कि मेरी बात सुनो, यूं करके खुतबा देना। सलमा इब्न अकवा कहने लगे, मैंने इनको बातों में लगाया ये समझ कर कि मैं मदीने में आवाज देकर आया हूँ, मैं इनको बातों में लगा हूँ, इतने में कौन आ जाएंगे? जिनको मैंने मदीने में आवाज लगाई है वो लोग मेरी मदद में आ जाएंगे। क्या मैंने इनको बातों में लगाया? जब वो बातों में लगे तो मैं बार बार यूं देख रहा था मदीने की तरफ के लोग आ रहे हैं नहीं आ रहे। बातों में क्या लगाया? बातों में लगा कर कहने लगे कि तुम मुझे जानते हो मैं कौन हूँ। तो उन्होंने अपनी पहचान करवाई, मैं सलमा इब्ने अकवा हूँ। क्या बताया? मैं सलमा इब्ने अकवा हूँ। उनका चर्चा बहुत हुआ था दुनिया में, किस में? दो चीजों में, तीर चलाने में और दौड़ने में। वो कहने लगे कि तुम्हें पता है कि मेरी दौड़ ऐसी है कि मैं अगर भागूंगा तो तुम में से कोई आदमी मुझे पकड़ नहीं सकता, और तुम में से कोई भागेगा तो मेरे हाथ से बच नहीं सकता। दूसरी बात, तुम अगर मेरे पास आना चाहते हो, देखो मेरे पास तीर है कमान में, एक भी तीर बचेगा तब तक तुम मेरे करीब आ नहीं सकते हो, अल्लाह ने मुझे ये हुनर दिया है। ये बातों में लगाया, तो कहने लगे मैं इनको बातों में लगा रहा था, इतने में तो मदीने के मेरी मदद, जो मैं आवाज लगा कर आया था, वो लोग मेरी मदद के लिए आ गए और काम आसान हो गया। ये कितने साल के बच्चे ने सारा किया? अरे जरा जोर से बोलो, ये क्यों इसने किया? जी, इसने क्यों किया? इसको इसका एहसास था कि मेरे जिम्मे ये काम है। एहसास जिम्मेदारी, एहसास। तो 12 साल का बच्चा ये काम कर रहा है और इतना बड़ा नक्शा कायम उसने कर दिया जो हमारे साल का 55 साल का भी नहीं कर पाता। बचपन का तो नहीं, 55 का भी नहीं कर पाता। एहसास जिम्मेदारी, इस बचपने में हमारे पास एहसास जिम्मेदारी खत्म हो चुकी है। और सुनो, हम लोग करके गए, मैं मस्जिद में बैठा था, एक बच्चा आया, शामी बच्चा, सीरियन बच्चा, गोरा बच्चा था, इतना मुन्ना, 13 साल उसकी उम्र थी। उसने अगर कहा कि मौलवी साहब मुझे कुरान पढ़ना है, मैंने कहा अच्छा है पढ़ो। तो उसने कहा मुझे कौन पढ़ाएगा, यहाँ कोई पढ़ने का मेरे पास जो हुआ ही नहीं है, इंतज़ाम नहीं है। मैंने कहा मस्जिद के इमाम साहब से बात कर लें। तो मस्जिद के इमाम साहब ने कहा कि मेरे पास तो गुंजाइश नहीं है, मैं बहुत सुबह से शाम तक मेरा शेड्यूल बहुत टाइट है, मैं नहीं पढ़ा सकता। वो कहने लगा मुझे कहीं भी पढ़ाओ। मैंने उसको पूछा तेरे पास कौन सा वक्त खाली है? उसने कहा मैं मजदूरी में करने जाता हूँ। हैं, 13 साल का बच्चा क्या कह रहा है, मैं कहाँ जा रहा हूँ मजदूरी करने? तू मजदूरी करता है? हाँ मजदूरी करता हूँ। कब जाता है मजदूरी में? कहा सुबह 8 बजे जाता हूँ, रात के 8 बजे तक 12 घंटे काम करता हूँ। अच्छा भाई, 12 घंटे काम करता है, तो तू इस छोटी उम्र में क्यों मजदूरी करता है? तो उसने कहा मैं यहाँ का नहीं हूँ, मैं महाजरी हूँ, शाम से सीरिया से हिजरत करके आया हूँ, तो तुझे क्या जरूरत पड़ी मजदूरी करने की? तो कहने लगा कि मैं, हम 6 भाई बहन हैं और मैं अपने घर का बड़ा बच्चा हूँ। क्या कह रहा है? मैं अपने घर का बड़ा बच्चा हूँ। तो तेरे अब्बा कि जब हमारे वहाँ हालात आए तो हमारे घर पर कोई चीज़ गिरी तो मेरे अब्बा का आधा जिस्म खत्म हो गया है, इसलिए मैं अपने चचा वगैरह के साथ यहाँ हिजरत करके आया हूँ, अभी मैं मजदूरी कर रहा हूँ और महीने के 600 रुपये कमाता हूँ, वहाँ के 600। उस जब हम गए तब यहाँ वहाँ के 22, यहाँ के 22, वहाँ का 1, वगैरह, ऐसे में 600 रुपये रोज कमाता हूँ, महीने के कमाता हूँ। तो 100 रुपये अपने पास रखता हूँ, 500 वहाँ भेजता हूँ। अजीब, हमने उसके लिए तलाश किया, कोई शक्ल बनी नहीं। मैं ऐसे गम्मत उसको करने लगा, मजाक क्या करने लगा कि भाई देख यहाँ तो है नहीं, तुझे हम इंडिया ले जाएं, हमारे इंडिया में मदरसा है, हम तुझको उसको दाखिल कर देंगे, तू वहाँ पढ़ियो, तेरा खर्चा भी कोई मसला नहीं होगा। हम उसको ला भी नहीं सकते, बस मैंने इसको ऐसे ही गम्मत में कहा, तो इतनी बात मेरी पूरी हुई, टप 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 आंसू गिरने लगे। अरे भाई मैंने क्या कहा तू क्यों रोता है, मैंने क्या कहा तू क्यों रोता है। तो वो कहने लगा मौलवी साहब अगर तुम मुझे हिंदुस्तान लेकर चले गए तो मेरे घर वालों को कमा कर कौन खिलाएगा। कितने साल का बच्चा ये मुझे कह रहा है, जरा जोर से बोलो, 13 साल का बच्चा कह रहा है कि अगर आप मुझे हिंदुस्तान ले जाओगे तो हमारे घर वालों को, 13 साल के बच्चा कह रहा है कौन कमा कर खिलाएगा। मेरे पैरों नीचे से जमीन निकल गई कि बच्चा कितनी एहसास जिम्मेदारी की बात कर रहा है, और फिर उसके बाद उसकी कितनी शानदार तरबियत होगी हुई होगी, अकेला है और वो मुझसे ये कह रहा है मुझे प्रण। तो मैंने एक जगह मदरसे में, वहाँ एक था शेख महमूद आफंदी का मदरसा, वहाँ पूछने भेजा, पढ़ाओगे? उन्होंने कहा रात को 10 बजे मैं फारिग हूँ, रात को 10 बजे पढ़ाऊंगा। वो बच्चा उछल कर कहने लगा शेख आना मस्त आई, मैं तैयार हूँ, मैं 10 बजे पढ़ूँ। अल्लाह तो 8 बजे मजदूरी को जाएगा, शाम को 8 बजे मजदूरी से आएगा और रात को 10 का, मैं रात को 10 बजे पढ़ने जाऊँगा, मेरा तय कर दो। मेरे पास से उछलता हुआ कूदता हुआ गया कि मेरा काम हो गया। ये तो उसके घर की तरबियत का असर हो गया कि उसको अपने प्राण की फिक्र है, ये 13 साल के बच्चे। तो मेरी और आपकी उम्र के बच्चे हजारों दुनिया में इस तरह से काम करते हैं, लेकिन चूंकि हम अच्छे आसुदा घर के बच्चे होते हैं, हमें इन चीज़ों के झमेले हमारे साथ नहीं लगे होते, तो हम अपने इस उम्र में अपने आप को बच्चा ही समझते हैं। कैसा समझते हैं बोलो, बचपने से गुजरते हैं, इसलिए इस उम्र में बहुत सारी करने की चीज़ें जो हमारे जिम्मे होती है वो हम नहीं कर पाते, और हम अपने स्कूलों में परवान चढ़ते चले जाते हैं। और स्कूल के माहौल में कुछ चीज़ें हमें सीखने की होती है, कुछ करने की चीज़ें होती है, और कुछ चीज़ें वो होती है जिससे बचते हुए हमें बड़ा बनना होता है। वो चीज़ें करने की हमारे से रह जाती है और न करने की चीज़ें हमसे गलती से हो जाती है। अब नतीजा क्या आएगा कि हम जब बालिग हो जाते हैं तो हमारी हर बात हमारे फरिश्ते लिखते हैं, तो हमारे खाते में वो सारी बातें नोट होती है। अब जिसने जो किया है उसका उसे भुगतना है, जिसने जो भी किया है उसका उसको, अल्लाह कुरान में फरमाते हैं मन अमला सालिहन फलिनफ्से व मन असा फअलैहा, जिसने भलाइयाँ की है तो उसको उसकी भलाई मिलेगी, उसका बदला मिलेगा। और कैसा एहसान का बदला, एहसान से अल्लाह देते हैं, हल जज़ाउल एहसान इल्ला एहसान, अल्लाह अच्छाई का बदला अच्छाई से देते हैं। और खुदा ना करे इसमें लग्जिशें चूक माहौल का असर ले लिया, ना करने की हरकतें हमसे हो गई, वो भी हमारे खाते में जमा होती है। फिर जब हम बड़े हो जाते हैं तो एक के बाद एक भुगतना पड़ता है, लोग परेशान होते हैं ना, वो कहते हैं क्यों हमारे साथ ऐसा हुआ। अल्लाह कुरान में फरमाते हैं लोगों से कहो हम तुम पर किसी पर भी जुल्म नहीं करते, वमा रब्बुका बिज़ल्लामिन लिल्आबिद, तुमने से किसी पर भी हम जुल्म नहीं करते। फिर ये कहा कैसे होता है, ये इसलिए होता है कि ये तुमने बीज डाले थे ये झाड़ उगे उसके। कब बीज डाले थे, कि जब समझ भी नहीं थी कि हमको ये करना चाहिए नहीं करना चाहिए, तब से कर रहे हैं। अल्लाह कुरान में फरमाते हैं बेमा कसबत अयदीकुम, ये तुमने किया था उसका तुम भुगत रहे हो, बेमा कसबत अयदीन्नास, लोगों ने जो किया है उसका वो भुगतते हैं। अब ये सारी बातें कौन हमें समझाने की जिम्मेदारी, हमें खुद समझने की हमारी जिम्मेदारी थी। हमारे घर वाले हमको समझाते हैं, लेकिन हमारे घर में ऐसे फिजा माहौल नहीं होता कि हमको ये बातें समझने की समझना रह जाती है। फिर नुकसान क्या होता है कि हम अपने माहौल में कुछ करने की चीज़ें छोड़ते हुए बड़े होते हैं, कुछ करने की चीज़ें छोड़कर कुछ ना करने की चीज़ें करते हुए बड़े होते हैं। जब हम जिस वक्त बड़े हो जाते हैं उस वक्त या तो हमारे पास भलाइयों का जखीरा होता है या हमारे पास बुराइयों का जखीरा हो चुका होता है। ये हमारा आम माहौल में ये सारी चीज़ें होती है, आम माहौल में तो होती ही है, लेकिन सबसे ज़्यादा ये जो होती है वो स्कूल कॉलेज के माहौल में होती है। ये जो गुनाहों का माहौल, लर्जिशों का माहौल, लायानी का माहौल स्कूल के माहौल में। आज स्कूल के माहौल को आप देखो, अभी मैं जयपुर गया था कुछ दिनों पहले, तो एक बच्चा हमारे पास आया यहीं गुजरात का कि मौलवी साहब हमारे मेडिकल कॉलेज है, इतने बच्चे हैं और इतनी बच्चियां हैं, सारे खुराफात में हैं, मैं हम उनको जमा करेंगे, आप उनसे थोड़ी बात करोगे, गुनाह में हैं, कबीरा गुनाहों में हैं, ऐसे कबीरा कबीरा गुनाहों में हैं। अब वो इन सारे गुनाहों के साथ परवान चढ़ रहे हैं। अब इनमें क्या होगा, एक तो इनके साथ गुनाहों का पलिंदा जमा हो जाएगा, दूसरा जब ये बड़े बनेंगे तो इनके जज्बात भी गंदे, इनके सोच भी गंदी, इनके फिक्रें भी गंदी, ये अपनी बहन को भी गलत निगाह से देखेंगे, ये अपनी भाभी को भी गलत निगाह से देखेंगे, ये अपने पास पढ़ने वाले को भी गलत निगाह से देखेंगे कि इनकी निगाहें गंदी हो चुकी है, इनके जज्बात गंदे हो चुके हैं, जब तक तौबा न करें। अब इनसे कोई माशरे में महफूज नहीं रह पाता कि जरासीम के साथ पता नहीं कैसे कैसे रोज अखबारों में आ रहा है। ये तो अल्लाह का एहसान है कि हमारे वहाँ ईमान के माहौल में थोड़ी इस चीज़ों के मुदागरे हैं, वरना कोई शोबा नहीं बचा हुआ कि जिसमें लायानी और गुनाह और बुराइयां ना होती हो। एक तो ये अपने बचपन से लेकर 55 तक उसी में परवान चढ़ा ये सारे जरासीम के साथ, दूसरा दूसरा ये अपने अब कौम का मान लो वडील बना, कौम का जिम्मेदार बना, अब ये अपनी उन सारी बुराइयों के साथ, अब इसकी सोच अच्छी नहीं है, फिक्र अच्छी नहीं है, जज्बात अच्छे नहीं है, अब ये अपने कौम को उसी धारे पर लेकर जाएंगे, क्योंकि किताबों में आता है लोग अपने बड़ों के ताबे होते हैं, अन्नास वाला दीन मुलूकिहिम, लोग अपने बड़ों के ताबे होते हैं, जैसे बड़े होंगे ऐसे उनके छोटे होंगे, जैसे बड़े होंगे ऐसे उनके छोटे होंगे, बड़ों का असर छोटों पर पड़ता है। ये सारी के सारी चीजों से अल्लाह आप हजरात को बचा ले, इसके लिए आप हजरात को ये जमा करके थोड़ी सी बात का कहना सुनना होता है। हमारे ये पढ़ने वाले बच्चे अपने आप को खाली स्टूडेंट ना समझे, अपने आप को खाली बच्चे समझ कर ना गुजार लें, आप एक मंजिल पर पहुंचने वाले हो, आज नहीं कल एक मंजिल पर पहुंचोगे, आपके साथ हजारों का मजमा जुड़ा हुआ होगा। आप में से कोई अगर स्कूल का उस्ताद बना तो आप 25 साल में उस्ताद बन जाओगे, 26 साल, 28 साल में उस्ताद बनोगे, 60 साल तक बच्चों को पढ़ाओगे, 60 साल तक आपके पास एक खेप की खेप पढ़ पर बच्चों की जाएगी। आप एक डॉक्टर बने तो आपके साथ हजारों लोग जुड़ेंगे जिंदगी भर। हमारे दोस्त है डॉक्टर, वो कहते हैं रोज मेरे पास 100 पेशेंट आते हैं, 100 पेशेंट का हजारों लोग उनसे जुड़ते हैं। आप आपके जिन जिन शोबों में आप जाओगे आपसे लोग जुड़े हुए होंगे। अब जो आपसे जुड़े हुए होंगे आपकी जो जो सोच, जो आपकी फिक्रें, जो आपके जज्बात होंगे वो आप उन लोगों को दोगे तो आपका घड़तर अच्छा हो, इसकी फिक्र यहाँ हो रही है। आपका क्या हो? आपका घड़तर अच्छा हो इसकी, इस ये तबलीग की मेहनत में आपकी इसकी फिक्र हो रही है कि आपका घड़तर अच्छा हो जाए। बाज़े मरतबा तो ऐसा होता है कि इन माहौल में रहते रहते आदमी अपने दीन और इस्लाम को भी हल्का समझता है। हाँ, हल्का, अपने आप को मुसलमान कहते हुए शर्माता है कि मैं मुसलमान हूँ ऐसा कहते हुए शर्म। हम विद्यानगर में गए थे तो हमको मुलाकात में लेकर गए एक प्रोफेसर साहब, वहाँ थे एक प्रोफेसर साहब, उनके घर में, घर के आगे, हालांकि रमजान का महीना है, घर के आगे उनके वो दिवाली में फूल नहीं बनाते, वो फूल बने हुए थे, तो फूल बने हुए थे तो उन्होंने अपनी बेटी को आवाज़ दी, मीना यूँ, अरे मीना क्या कह रहे हैं, और दूसरी का नाम दीना था आपके विद्यानगर में, मीना और दीना, तो ऐसी ही कोई चीज़ मंगवा रहे थे। तो साहब आपने ये कैसा नाम रखा है? कहते हम तो यहाँ घरों के माहौल में रहते हैं, हम नहीं जाहिर करना चाहते कि हम मुसलमान हैं। लो जी, यहाँ कोई हमको नहीं जानता कि हम मुसलमान हैं, हमको कोई नहीं जानता कि हम मुसलमान हैं, हम तो भाई ऐसे ही, इन्हें तो ऐसे ही बनकर रहना पड़ता है। अपने इस्लाम पर इन्हें डर लगने लगा, अब वो इसी हाल में मर गए तो पता नहीं क्या होगा। हाँ, हम अहमदाबाद में थे तो इस तरह से कर्जदारी जोन के ले रहे थे, तो जोन की कर्जदारी में एक केरला के ऑफिसर थे, उनकी उनकी कर्जदारी एक ने सुनाई कि इस तरह मिलने गए तो वो एक बिल्डिंग में रहते थे, तो उन्होंने ये सुनाया कि हमने ढूंढते ढूंढते उनका सिरा लगा लिया, क्या रहते हैं, पता चला कि वो अपने इस्लाम को जाहिर करने में शर्माते हैं और डर महसूस करते हैं, तो उन्होंने अपने इस्लाम को जाहिर नहीं किया। ये बात तो हो गई, फिर उसके बाद क्या हुआ? कहा उसके बाद ये हुआ, उनसे पूछा क्या आप अकेले हो? ना, मैं अपने अब्बा के साथ रहता हूँ, रहता था। तो आपके अब्बा कहाँ हैं अभी? रहता था तो मतलब, तो उनका इंतकाल हो गया। अच्छा, फिर कर उसके बाद ये हुआ कि हम सब कॉलोनी वाले ने जाकर उसको जला दिया। ये हमारे मुसलमान, अभी हम दिसंबर के सफर में पानोली में थे तो पानोली में कर्जदारी पूछ रहे थे, सुबह में आज जोन की जमातों की हमने कर्जदारी पूछी ना, ऐसे कर्जदारी पूछी तो दो मुसलमान बस्तियों की कर्जदारी ऐसे सुनाई कि वो अपने आप को जाहिर करने में भी शर्माते हैं, तो वो कहते थे कि हमारे मुर्दों का इंतकाल हो जाता है तो हम बस्ती वाले मिलकर जला देते हैं। दो गांव वालों ने सुनाई ये कर्जदारी, हमारे इस सूबे में ऐसा हो रहा है। ये क्यों हो रहा है? ये क्यों हो रहा है कि इसकी बुनियादी जमीनी मेहनत नहीं हुई। बाज़े तलबा अपने आप को ऐसा करते हुए शर्माते हैं, तो वो हाजी साहब वो जो पढ़ाने वाले थे विद्यानगर के, वो क्या कहने लगे कि मैं तो दूसरे सूबे का हूँ, जब यहाँ से रिटायर्ड होकर जाऊँगा ना तो अपनी दीना का नाम मदीना करूँगा और मीना का नाम आमीना करूँगा, ऐसा कहा उन्होंने, उन्होंने ऐसा कहा। हमने उनको कहा साहेब वो तब तक मीना आमीना जैसी होगी तो आमीना करोगे और दीना मदीना जैसी रहेगी तो मदीना करोगे, तब तक तो पता नहीं वो कैसी हो जाएगी, ऊपर से नीचे तक का सब बदल जाता है। इसलिए हम बाज़ मरतबा स्कूलों में इस माहौल में रहते हुए हम अपने आप को खिफत में महसूस करते हैं। हमारे बुजुर्ग फरमाते हैं कि हमारे आपस में इसके मुदागरे हों कि अल्लाह ने कहा बहुत बड़ा इनाम है कि हम मुसलमान हैं, अगर ईमान के साथ हमारी ज़िंदगी है तो सब कुछ है। ये अल्लाह ने दुनिया इम्तिहान की जगह बनाई है, अगर दुनिया में सबको सब कुछ मिल गया लेकिन अगर ईमान हाथ से गया तो मरने के बाद हमेशा हमेशा के उसके आ गए, तो इस पर हमें खुशी हो, अल्लाह का एहसान है कि हमको अल्लाह ने इस्लाम वाले घर में पैदा किया है। दूसरा, आप माशाल्लाह पढ़ने गए हो तो पढ़ने गए हो तो हमारी पढ़ाई अच्छे से अच्छी हो, इसकी हमारी फिक्र हो अच्छे से अच्छी। आप अपने वालिदैन से पूछो कि आपके वालिदैन आपकी फीस कितनी मेहनत से आपको भेजते होंगे, आप अपने वालिदैन से पूछना, पता नहीं आपके वालिदैन में से कौन कौन कैसे कैसे मजदूरी करते होंगे, कितनों ने कर्जे लिए होंगे, कितनों ने जेवरात बेचे होंगे, कितनों ने जमीनें बेच दी होगी आपकी फीस भरने के लिए। आपको नहीं नजर आता, आपको तो महीने के पैसे मिल जाते हैं, लेकिन उनसे पूछना जो आपको पैसे भेजते हैं, आपके पैसे कैसे आते हैं, बूढ़े बाप कैसे कैसे मजदूरी करते हैं। मैं एक मरतबा रमजान में अपने घर जा रहा था, एक बड़े मियाँ को मैंने देखा स्क्रैप की लहरी लेकर मोहल्ले में फिरते हैं, तो भीप फिर रहे थे। तो मैंने पूछा 45 डिग्री चाचा धूप है और उनके इतने पैर सोझे चढ़ गए थे और बूढ़े आदमी थे, एक भी बाल काला उनका नहीं था और मोहल्ले में लोग सोए हैं और आवाज लगा रहे हैं भंगार भंगार। मैं उनको देखकर रो पड़ा, 45 डिग्री में वो इतना पैर सूझा हुआ है और भंगार की लहरी लेकर मोहल्ले में फिर रहे हैं, 70-75 साल के चचा। मैंने कहा चचा तुम इस धूप में फिर रहे हो? तो दूसरा जो उनका जवाब था वो मुझे आपको सुनाना है। वो कहने लगे बेटा, वो कहने लगे बेटा अपने पेट के लिए नहीं फिर रहा हूँ, बच्चों के पेट के लिए फिर रहा हूँ, बच्चों के पेट के लिए फिर रहा हूँ। मैंने कहा चचा तुम्हें क्या मसला है? कहा मेरी एक बेटी बेवा हो गई है, उसके 9 बच्चे हैं मेरे पास रहते हैं और मेरे बच्चे तो शादियां कर करके चले गए, तो अपने बच्चों के लिए फिर रहा हूँ। एक हमारे मौली साहब थे, साल लगा रहे थे, 6 महीने उनके हुए, मुझे कहने लगे कि मुझे वापस जाना है। मैंने कहा क्यों वापस जाओगे? मैंने उनको तरजीह खूब दी, तो उसके बाद वो कहने लगे कि अम्मी ने कहा कि बेटा तुझे खर्चा भेजने के मेरे पास पैसे नहीं है। वो क्या करती थी? मैंने कहा क्या करती अम्मा? का मेरे अब्बा का तो इंतकाल हो गया, अम्मा ये कह रही बेटा तुझे जमात में जाना है, अल्लाह के रास्ते में जाना है। मैंने कहा मैं मजदूरी करूंगा, मैं कुछ काम करूंगा, करना है तुझे जाना है। मैंने कहा तुम्हारी अम्मा क्या करती है? कल लोगों के घरों में बर्तन जाकर धोती है और मुझे पैसे भेजती है। वो माँ ने कहा बेटा अब मैं बीमार हो गई हूँ, तेरे पैसे भेजने के पैसे मेरे पास नहीं है। तो अपने वालिदैन कैसे तुम्हें पैसे भेजते हैं वो उनसे पूछना। तो हम अपनी पढ़ाई को अच्छे से अच्छे बनाएं, अच्छे पढ़ो अच्छे बनो ताकि अल्लाह की निगाह में भी अच्छे हो जाओ और उम्मत के लिए एक अच्छा सरमाया तुम बनो। इसलिए दूसरा काम अच्छी पढ़ाई पढ़ना है। तीसरा काम अपनी पढ़ाई के दौरान में वो अमल करो जिससे अल्लाह राजी हो जाए। उन अमलों में सबसे बड़ा अमल जो है वो नमाज का अमल है। आपके पास आपकी नमाज किसी हाल में भी ना छूटे, एक आदमी की भी नमाज किसी हाल में माफ नहीं है। अपने माहौल में हर हाल में नमाज पढ़ो और नमाज को इज्तिमाई तौर पर पढ़ने की कोशिश करो। तुम इज्तिमाई नमाज पढ़ोगे ना तो तुम्हारी तो तुम्हें देखा देखी कई बच्चों में हौसले आ जाएंगे, वो नमाज वाले बन जाएंगे। किताबों में आता है कि जो नमाज ही मुसलमान नमाज पढ़ता है वो अल्लाह की जिम्मेदारी में आ जाता है, अल्लाह के जिम्मे में आ जाता है, और जिसकी जिंदगी से नमाज निकल जाती है वो अल्लाह की जिम्मेदारी से निकल जाता है। इसलिए हमारी किसी हाल में नमाज न जाए और नमाज की कोशिश ये करो कि इज्तिमाई आपकी नमाजें हों, इज्तिमाई। इसके लिए आप स्कूल वालों से ना पूछो कि हम नमाज पढ़ें, अगर उन्होंने मना किया और फिर आप पढ़ोगे तो कानून के खिलाफ होगा। हमें अपने स्कूल में कोई काम कानून के खिलाफ किसी हाल में भी नहीं करना। आप गार्डन में, आप अपने कमरे में, छत पर कहीं भी नमाज पढ़ो, आपको देखा देखिए दूसरा तीसरा चौथा कई बच्चे आ जाएंगे। हाँ, और उसमें आप तो माशाल्लाह ऐसे मोहल्लों के बच्चे हो कि आपके वहाँ तबलीग का काम है, दीन की मेहनत है, संभले हुए हो। आपके स्कूल में ऐसे कितने गैर मानूस मोहल्लों के बच्चे होंगे कि जिनके वहाँ दीन आखिरत की बात करने वाला कोई नहीं है। हाँ, वो बेचारे ऐसे कैसे जिंदगी गुजार लेते हैं। तुम नमाज पढ़ोगे तो आपके देखा देखी ऐसे बच्चे आपके साथ नमाज में शरीक होंगे। हाँ, हम लोगों को एक स्कूल के बच्चे कहने लगे कि हमारे वहाँ कानूनन पाबंदी है। क्या पाबंदी है? कोई इस्लामी विधि या नहीं करने की, कोई भी धर्म का कोई आदमी कोई विधि न करे। तो हमें पता नहीं है कि हम कौन मुसलमान है कौन हिंदू है, तो हम लोग क्या करें? तो उन लोगों को हमने, और यूनिफॉर्म भी सब लड़के लड़कियों का एक ही है, तो हमने कहा कि तुम नमाज पढ़ोगे, हमारे वहाँ विधि नहीं कर सकते कोई इस्लामी, तो तुम्हारे बॉर्डिंग जो बॉर्डर है स्कूल की उसके बाहर तुम नमाज पढ़ो। तो उन्होंने कहा ठीक है, 2 बच्चे थे वो, उन्होंने कहा हम ऐसा करेंगे। दूसरी बार दूसरे साल वो मिले, कहने लगे कि हमने नमाज शुरू की तो एक तीसरा आया, चौथा आया, पांचवा इधर उधर से आया, 15 बच्चे हम जमा हो गए, 15 लड़कियां भी उसमें आई, हम भी मुसलमान। अब तक नहीं पता था कौन मुसलमान है कौन मुसलमान नहीं है, 15 बच्चे जमा हो गए, एक दूसरे के संभलने का जरिया बने। इसलिए आप लोग इज्तिमाई नमाज पढ़ो। दूसरा काम कि आपकी नमाज ना छूटे और कोशिश करो इज्तिमाई आपकी नमाज हो। तीसरा काम आपको जो स्कूल के माहौल में करना है वो ये करना है कि आपके हॉस्टल में, आपको तो माशाल्लाह गश्त वाले आपके पास आते हैं, इस तरह इज्तिमा में तुम दीन की बात सुनते हो और वहाँ तुम्हारे मरकज में भी प्रोग्राम होता है उसमें तुम जाते हो। ये बेचारे देहातों के गांवों के बच्चे हैं, सुबह अजान की जमातों में कारदारी आई, तुम्हारे कितने गांवड़े वो हैं जहाँ मुसलमान है वहाँ अजान भी नहीं है, नमाज भी नहीं है, मस्जिद भी नहीं है, मौली साहब भी वहाँ नहीं है। ऐसे गांवड़ों के बच्चे भी आपकी स्कूलों में पढ़ने आते हैं, वो अल्लाह रसूल की बात भी नहीं सुनते। जिस गांवड़े में अजान नहीं होती वो गांवड़े में वो बच्चे मुसलमान अल्लाह रसूल की बात ही नहीं सुनते, उनको कोई सुनाने वाला नहीं है। आप ऐसे बच्चों से दोस्ती करो, वो हमारे भाई है, अल्लाह ने उनको हमारा भाई बनाया है। हमारे बुजुर्ग फरमाते हैं आप उनसे दोस्ती करो। क्या करो बोलो? दोस्ती करो और 10 मिनट रोजाना फारिग करो इनके लिए। कितने मिनट बोलो? 10 मिनट। 10 मिनट या तो स्कूल शुरू होने से पहले या रिसेस में या छुट्टी के बाद। दसवीं वालों को पता है कि हमारे क्लास में कौन मुसलमान है, ग्यारहवीं वालों को पता है कि हमारे वहाँ कौन मुसलमान है, बारहवीं वालों को पता है, हर क्लास वाले को अपने क्लास के बच्चों से पता है कि कौन मुसलमान है। नहीं है तो ढूंढो कौन मुसलमान है, उनसे यारी लगाओ, दोस्ती करो। वो जाए नहीं होने चाहिए, वो बर्बाद नहीं होने चाहिए, उनकी उनसे दोस्ती करो और दोस्ती के लिए उनको चाय पिलाओ। तुम वहां पर रह के पैसे लेकर जाते हो ना, इसको बचाने की मेहनत में उसको लगाओ, 5 रुपए की चाय पिला दो, 2 रुपए का नाश्ता करवा दो, वो तुम्हारा दोस्त हो जाएगा। फिर उस दोस्ती में उसको नमाज वाला तुम बनाओ। अगर तुम हॉस्टल में रहते हो, तुम्हारे वहां तालीम होती होगी, उस तालीम में उसको बैठने वाला बनाओ। अगर तुम अपने अच्छे मोहल्लों में रहते हो जहाँ गश्त वगैरह होते हैं, उनको कुछ ना कुछ दिन के बाद सुनने वाला बनाओ सकोगे। तो ऐसे बच्चों से दोस्ती करो ताकि जाया ना हो जाए, बर्बाद ना हो जाए, इनको तुम सहारा बन जाओ, सहारा। हमारा एक बच्चा भी जाया हो, हम इस पर राजी नहीं है। सारे बच्चे हमारा सरमाया है, हमारी पूंजी है, हमारी मूडी है। ये आज के बच्चे हैं, कल के हमारे वडील बनेंगे। हमारे बच्चों को संभालो, इसके लिए रोजाना 10 मिनट फारिग करो, और 10 मिनट फारिग करके अपने बच्चों को ढूंढो। अगर वो तुम्हारे दोस्त हैं तो उनको अपनी मस्जिद की नमाज में जोड़ने की फिक्र करो, अपने वहां की तालीम में इनको थोड़ी सी अल्लाह रसूल की 5 मिनट की बात सुनाओ हॉस्टल में, ताकि इनके दिल दिमाग पर अल्लाह रसूल तो कुछ पड़े। इनको अल्लाह रसूल सुनाने वाला ही कोई नहीं होता। इन बच्चों को इस अमल में इनको मशगूल करो। और उसके साथ साथ जो जब तुम घरों पर आ जाओ, जो हॉस्टल में नहीं रहते घरों पर आ जाते हो, तो अपने घरों पर आकर लाजानी में मशगूल ना हो जाओ। तो फिर क्या करो, आपके मोहल्ले में आप जैसे बच्चे हैं, आपके अंदर जो फिक्र है वो उनके अंदर नहीं है। अपनी मस्जिद के साथियों के साथ रहते हुए उन बच्चों को भी इन आमाल की तरफ मुतवज्जे हो, इसकी फिक्र करो। आपके पास आधा घंटा है, अपनी मस्जिद के साथियों से कहो मेरे पास आधा घंटा है, चलो मोहल्ले में इतने स्टूडेंट्स हैं, चलो उनसे मिलने जाएंगे, मोहल्ले में फला फला है उनसे मिलने जाएंगे। बहुत सारे बच्चों में फिक्र नहीं होती, तो फिर वो क्या करते हैं। आज आपके माहौल में अपने देखें कि जिन बच्चों को अगर दीन की समझ नहीं है तो वो लायानी में मशगूल हो जाते हैं। लायानी जानते हो, न करने की चीज़ें, और आज के ज़माने में वो चीज़ सबसे ज़्यादा मोबाइल है, सबसे ज़्यादा मोबाइल, और उसमें इंटरनेट है। कैसे गुनाहों में मशगूल हो जाते हैं, अल्लाह की पना। बिचारों को इनको नहीं पता होता कि हमारे ये किए हुए करतूत हमें भुगतने पड़ेंगे। हजरत इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, कोई गलत काम करता है, बेहयाई का अमल, वो अपने माथे पर देवा चढ़ाता है। क्या चढ़ाता है बोलो, देवा। देवा चुकाना पड़ता है, हर आदमी को देवा चुकाना पड़ेगा। फिर इमाम शाफ़ी फरमाते थे रहमतुल्लाह अलैह कि देवा कौन चुकाएगा, या तो ये अल्लाह कर्जा उसकी बीवी से चुकवाएंगे, या उसके बेटे से चुकवाएंगे, या उसकी बहन से चुकवाएंगे, या उसकी माँ से चुकवाएंगे, उसको चुकाना पड़ेगा। ये देन है, ये कर्जा है। लोग ये कहते हैं कि भाई हम मर्द तो पता नहीं कितने लोग ऐसे गुनाह करते हैं, लेकिन हमारे घर में तो औरतों को ऐसा कभी नहीं हुआ। ऐसा ना समझो कि कभी नहीं हुआ, मर्द उल्टे उल्टे काम करते हैं ना, तो औरतों को भी पता नहीं चलता, औरतें करेगी ना मर्दों को भी पता नहीं चलेगा। एक रिवायत में आता है, ये बेहयाई के जज्बे अगर औरतों में अल्लाह ने पर्दा ना रखा हो ना, तो मर्दों से भी ज्यादा है। लेकिन उस पर अल्लाह ने हया का पर्दा डाल दिया है। अल्लाह ने कुरान में जहां जिना को जिक्र किया, पहले औरत को जिक्र किया है, अज़ानियत वज़ानी, जिना करने वाली औरतें और जिना करने वाले मर्द। उलमा लिखते हैं इसका मतलब कि ये जज्बे औरतों में मर्दों से भी ज्यादा होते हैं। तो अगर उस पर लगाम ना डाले अल्लाह, तो इसको कोई बचा नहीं सकता है। तो उसमें अगर हमारी बहनें मुब्तला हो गई, हमें भी नहीं पता चलेगा, अब ये हमारी खेत की खेप उसमें चली जाए। इसके लिए ये अक्सर हमारा मजमा मोबाइल के रास्ते से लाजानी में मशगूल हो गया, हम भी इसमें मशगूल हो गए। हमारी कोशिश ये हो, अल्लाह पाक ने ये हमारी ज़रूरत के लिए बनाया है, ये सारी अल्लाह की नेमतें हैं ज़रूरत के लिए। पानी का गिलास होता है, उसमें पानी पियो जायज़ है, अब उसमें कोई शराब पिए तो कहीं नाजायज़ है। अल्लाह ने यह हक दिया है किसी के नुसरत के लिए, तो ये जायज़ है। अब इसको कोई जुल्म करने के लिए इस्तेमाल करे, ये नाजायज़ है। ऐसी ये जितनी अल्लाह ने मॉडर्न चीज़ें बनाई है, वो इंसानों की मदद के लिए बनाई है। जो भी अल्लाह ने जिसके दिमाग के जरिए से बनवाया, इसको सही तरीके से इस्तेमाल करो। दुनिया में इसके हजारों सही तरीके हैं, उससे लोग कितने काम कर लेते हैं, लेकिन इसी को आदमी गलत इस्तेमाल करे तो ये इसके ज़िंदगी को बर्बाद कर देंगे, और किसी को कोई बर्बाद नहीं करेगा। अपनी ज़ात के अपने पैरों पर हम कुल्हाड़ी मारेंगे, अपने किए को हमें भुगतना है। इसलिए अपनी निगरानी हम खुद करें, हमारी निगरानी कोई नहीं करेगा, हमारा ऊपर निगरान कोई नहीं है, हमें अपनी निगरानी खुद करनी पड़ेगी। या तो हम अपना नतीजा अच्छा पाएंगे, या आगे जाकर हमें अपना नतीजा खुद भुगतना पड़ेगा। इसलिए खुद भी इन चीज़ों से बचते हुए हमारे माहौल में हमारे पलने वाले बच्चे इन चीज़ों से बचे, उसकी हमें फिक्र करनी पड़ेगी। उसके लिए उनको मस्जिद के माहौल में लाओ, गश्तों में, तालीम में, आमाल में, सीखने में ये बच्चे जुड़ें। और फिर छुट्टी के जो दिन होते हैं, उन छुट्टी के दिनों को इधर उधर ना गुजारें। ये छुट्टी के दिन है, उसको काम के बना दोगे तो ये बेकारी से बच जाएंगे। वरना हमने देखा है कि बच्चे छुट्टी के दिनों में पिकनिक पर जाते हैं, टोले बन बन कर जाते हैं, और जो खराफात और गुनाह होते हैं, अल्लाह की पनाह, अल्लाह की पनाह। हम तो बच्चों को देखते हैं, हम भी सफर में कहीं ना कहीं देखते हैं, हमें अभी हम लोग आ रहे थे एक सफर से, तो हमारे डिब्बे में पता नहीं कितने बच्चे बच्चियां थी, गुजराती ही थी, ऐसी धमाल और ऐसे मस्त, ये छुट्टी के दिन है, कहीं ना कहीं गुजर रहे हैं, तो हम इस छुट्टी के दिनों को गनीमत समझें और अल्लाह के दीन को सीखने में हम गुजारें, तो इंशाल्लाह अगर इन आमाल के साथ हमारे मदरसों में रहना हो, हमारे स्कूलों में रहना हुआ, अपने मोहल्लों में रहना हुआ, तो थोड़े दिनों की तुम्हारी पढ़ाई के दिन है वो गुजर जाएंगे, लेकिन अच्छे बड़े, अच्छे बनकर बड़े बनोगे, आप डॉक्टर बनोगे लेकिन ईमानदार डॉक्टर बनोगे, आप स्कूल पढ़ाने वाले उस्ताद बनोगे लेकिन ईमानदार उस्ताद बनोगे, आप इंजीनियर बनोगे लेकिन ईमानदार इंजीनियर बनोगे, आप वकील बनोगे लेकिन ईमानदार वकील बनोगे, हराम की गजा से बच जाओगे। हाँ, मुझे एक हमारे बच्चा स्कूल का बच्चा, अब तो वो उस्ताद हो गया, गवर्नमेंट में उसकी जॉब लग गई, वो कहने लगा मौली साहब हमारे स्कूल में इतना फ्रॉड होता है, गैर हाजिरी होती है और गैर पूरे पूरे कितने दिन आते नहीं और उसकी सारी हाजिरी लिखी जाती है, और पढ़ाने के वक्त में कितने कितने घंटों में पढ़ाने में सुस्ती करते हैं फिर भी पूरे पैसे लेते हैं। मैंने कहा तुम क्या करते हो? कहा मैं एक भी घर हाजिरी नहीं करता हूँ, और मैं जब पढ़ाने जाता हूँ मैं घड़ी देख लेता हूँ कितने बजे गया हूँ और कितने बजे निकला हूँ, अगर कोई मिनट कम हुई है तो मैं लिख लेता हूँ, पूरे हफ्ते में जितना मेरा कमी हुई है वो महीने में इतनी इतनी मैं अपनी तनख्वाह कटवा देता हूँ। ईमानदार मास्टर हुआ, ईमानदार, मैं बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, अब मैं बच्चों को पढ़ा रहा हूँ तो मैं सोचूंगा कि ये टाइम मैंने बच्चों के लिए दे दिया है, मेरी पूरी ताकत बच्चों को जहन साजी करने में लगनी चाहिए, अगर मेरे अंदर ये एहसास नहीं है तो मुझे कल गुजारना है, पढ़ाते हुए गुजारूं तो भी क्या, ना पढ़ाते हुए गुजारूं तो भी क्या, मुझे क्या कौन पूछने वाला है, तो मैं फिर वो धगश से और मेहनत से बच्चों को नहीं पढ़ाऊंगा। ये सारे का सारी सोच ये दीन की मेहनत के रास्ते से हमारी बननी चाहिए, इसलिए आप बच्चे अपने आप को बच्चे ना समझो, जिस माहौल में जिस फील्ड में आप पढ़वान चढ़ रहे हो अपने ही फिक्र करते हुए सारी चीजों में लगकर पढ़ोगे तो अच्छे बड़े बनोगे, कैसे बड़े बनोगे बोलो, और फिर जिस फील्ड में आप जाओगे आपके जरिए से हजारों, एक मसलन एक बच्चा एक आदमी उस्ताद बना स्कूल का, अब वो जितने साल बच्चों को पढ़ाएगा उसके हाथ से जितने बच्चे परवान चढ़ेंगे वो मरने के बाद उसका जखीरा बनेंगे। हाँ, कि मैंने अपने बच्चों को स्कूल पढ़ाते हुए ये सोचा कि ये तो मेरे जॉब है नौकरी है, चलो कोई बात नहीं मैं पढ़ा दूं सब्जेक्ट, और एक मैं ये समझू ना खाली पढ़ाना नहीं है, ये बच्चे मेरे आखिरत का जखीरा है, ये मेरा बैलेंस बन जाएगा, इन बच्चों का अच्छा घटतर हो जाएगा, अच्छी आदतें बच्चे सीखेंगे, अच्छी फिक्र इनको सीखेंगे, तो मैं उनके साथ अच्छा बर्ताव बरतूं, अच्छी बोली इनको सिखाऊं, अच्छी वाणी सिखाऊं, अच्छी रहनी करने सिखाऊं, अच्छा बरतना सिखाऊं, अब उसका असर बच्चों पर पड़ रहा है, अब उसके हाथ से जो बच्चे अच्छे घड़तर इनका होगा ये जितनी अच्छाइयां करेंगे उसके उस्ताद के नामे अमल में जाएगी। लेकिन ये कौन सा उस्ताद ऐसी बातें सोचेगा, जिस उस्ताद ने इस फिक्र से इन बच्चों को परवान चढ़ाया है, अल्लाह का एहसान है कि आपके जिले में अच्छा स्टूडेंट का काम है, आप लोग हर साल इज्तिमा के में आते हो और ये बातें सुनकर जाते हो और ये माशाल्लाह कर रहे हो, लेकिन चूंकि ये हर साल हम इसलिए करते हैं ताकि याद ताज़ा होती रहे, ये सारी बातें ताज़ा होती रहे, आप कर तो रहे हो लेकिन जितना कर रहे हैं इस पर सब्र कनात नहीं कर रही, अभी हमारा बहुत बाकी है, उसको आगे बढ़ते बढ़ते इतनी करनी है कि हम में से कोई ना बचे और हमारे अलावा जितने बच्चे हैं उन पर भी 100% हमारी इस तरह की मेहनत हो जाए ताकि 100% हमारा मजमा कवर हो जाए। करोगे इसके फिक्र इंशाल्लाह? अब अभी गुज़िश्ता साल आपको जो बातें समझाई थी आप में से कौन कौन कर रहा है, कौन से स्कूल वाले कर रहे हैं, जरा हाथ उठाओ। कोई स्कूल में उन बच्चों ने नमाजें शुरू कर दी हो या बच्चों के ऊपर मेहनत की शक्ल शुरू कर दी हो, छुट्टी के वक्त अल्लाह के रास्तों में जाना शुरू कर दिया हो, अपने मोहल्ले के बच्चों में कुछ मेहनत शुरू कर दी हो, किसी कॉलेज वाले ने किसी स्कूल वाले ने, तो जरा खड़े होकर सुनो, कारदारी सुनो, जल्दी से देखो, मगरिब का वक्त बहुत मुख्तसर है, जहां भी हुआ हो जितना भी हुआ मुझे पता, आ जाओ जल्दी से, आ जाओ माइक पर भाई, और कोई हो तो आ जाओ जल्दी से, यहाँ करीब आ जाओ। आपके जो 10 साथी है उनकी पढ़ाई कैसे चल रही है? पढ़ाई में सुस्ती तो नहीं करते, गैर हाजिरी तो नहीं करते? हाँ माशाल्लाह। अच्छा, कोई बच्चा सुस्ती करता है तो उसकी आप फिक्र करते हो?
मुलाकात करके फोन करके बुला लेते हो।
मतलब स्कूल में गैर हाजिरी करे इसको आप फिक्र दिलाते हो कि गैर हाजिरी ना हो? माशाल्लाह, आप 10 हो, आपके अलावा स्कूल में कितने मुसलमान बच्चे हैं? तो उनकी कौन फिक्र करेगा? तो आप नाश्ते की उनको दावत दे दो ना, आप अपनी अम्मी से कहो अम्मी आज थोड़ा सा मेरा नाश्ता ज्यादा बना दो, या अगर आप वहाँ कैंटीन में करते हो तो अपने पैसे लगाओ, देखो तुम्हारा तो थोड़ा लगेगा लेकिन उसके बेचारे की पूरी जिंदगी काबू में आ जाए। उस बच्चे को कहो आप चाय अपने साथ में पियेंगे, चाय पीते पीते उससे बात कर लो, होता है चाय पीते पीते बात कर लो, हाँ तो चाय पीते पीते उसका नाश्ता अपने 2-4 दिन करवा दो तो तुम्हारी बात सुनने वाला बन जाएगी। ठीक है, नियत बनो कि 40 के 40 को मिलना है, अच्छा भाई और किसी स्कूल में कोई हो रहा है? खड़े होकर जल्दी बताओ, टाइम बहुत शॉर्ट है, वहीं से सुना दो। 3:30 बजे नमाज। अच्छा और कितने बच्चे नमाज पढ़ते हो? 8 से 9। आपके स्कूल में कितने बच्चे हैं? फिर दूसरे बच्चों की क्या फिक्र की आपने? उनसे दोस्ती करो, दोस्ती में लोग बड़े बड़े काम करते हैं। हाँ दोस्ती हो जाती है ना तो दोस्ती में पता नहीं लोग घर भी छोड़कर भाग जाते हैं। हाँ देखो ना रोज अखबार में पढ़ते हैं फलां से दोस्ती हो गई और घर छोड़कर चले गए। दोस्ती में बड़े बड़े काम करते हैं तो इतना नहीं काम करेंगे, तो अपने दोस्ती में इनसे काम करवाना है। करोगे आप? मुलाकातें उनकी करते हो? अच्छा उनको उनके उनके ऊपर अपना पैसा लगाओ, उनको नाश्ते वगैरह करवाओ, ठीक है? चलो बहुत अच्छा। और भाई किसी स्कूल में कोई काम हो रहा है? जहाँ जो बताओ जरा बताओ जी। अच्छा माशाल्लाह, आपके स्कूल में कितने बच्चे हैं? आप कितने नमाज पढ़ते हो? बाकी 30 की क्या फिक्र होती है? माशाल्लाह माशाल्लाह। तो स्कूल शुरू होने से पहले जल्दी आ जाओ 10 मिनट पहले, और बच्चे को ध्यान में ले लो फला बच्चे से आज मिलना है, स्कूल शुरू होने से पहले कर लो उसकी मुलाकात, इसकी कोशिश करो। हमारा एक बच्चा भी हमारे हाथ से जाया नहीं होना चाहिए। और हॉस्टल भी है वहाँ, तो आप हॉस्टल में होते हो तालीम भी करते हो? अच्छा 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 ठीक, तो आप अपने मोहल्ले में फिर जुड़ते हो माशाल्लाह। चलो भाई और कौन से स्कूल में क्या मेहनत हो रही है? कोई जमात में जाने की शक्ल बनी 24 घंटे की जमात? हमारे बुजुर्ग फरमाते हैं भाई स्टूडेंट तो 3 दिन नहीं जा सकेंगे, वो 2 दिन जा सकते हैं 2 दिन जमात में जाएं, 2 दिन नहीं जा सकते तो 24 कलक जाएं, शनिचर इतवार को छुट्टी हो 24 कलक जाएं। तो जो जो शुरू हो जरा सुनाओ, और कैसे जरा खड़े होकर जल्दी करो भाई, जरा जो देखो सुनो, जोर से सुनो, जोर से बोलो। 22 स्टूडेंट है माशाल्लाह, देखो इन्होंने अच्छी कारदारी सुनाई कि हम 24 कलक जमात में भी जाते हैं। हाँ माशाल्लाह माशाल्लाह, तो 24 में से 12 तो माशाल्लाह दिन भर पड़ गए, दूसरे 12 की क्या फिक्र हो रही है? अच्छा मेहनत जारी है बहुत, लेकिन एक दरखास्त करो कि महीने में एक ही बार 24 घंटे जाते हो, आप अगर 15 दिन में 2 मरतबा जाओ तो एक एक संडे घर रहो, एक संडे अलग रास्ते में जाओ, ठीक है? जिस वक्त 2 दिन छुट्टी हो 2 दिन चले जाओ, ताकि ये बच्चे कहीं ना कहीं दिन से जुड़े रहे, ठीक है? और भाई कहीं होता है कुछ जी? खड़े होकर आपने तो सुना है। अच्छा ये दूसरी कारदारी है, सुनाओ जोर से जरा,
यूं
यूं मुड़ जाओ।
हर हफ्ते हमारी 24 घंटे की जमात जाती है।
हाँ
4 हफ्ते में चार हफ्ते एक एक जमात जाती है।
माशाल्लाह माशाल्लाह। आप कहाँ के हो?
जामनगर
के। यहाँ पढ़ते हो? हाँ अभी इज्तिमा में गए थे ना जामनगर में, वहाँ तो वहाँ कुछ मुझे बच्चे मिले, वो कहने लगे हम विद्यानगर में पढ़ते थे, हम तो कुछ जानते नहीं थे, और ऐसे घर के बच्चे हैं कि हमारे घर में ये है गुना है और लाया नहीं है और ये है, लेकिन वहाँ विद्यानगर के बच्चों ने हमको दीन में लगा दिया था, ये यहीं का मिला था। और उसने कहा कि वहाँ से मुझे स्टूडेंट ने सही बात समझाई, वरना मैं तो समझा ही नहीं था। वो इतना शुक्र अदा कर रहा था, एक बच्चा कच्छ में मिला, कच्ची छोकरा एक मिला कि हम तो ऐसे ऐसे घर के बच्चे हैं, हमारे वहाँ तो कुछ है ही नहीं, लेकिन वहाँ हॉस्टल में हमको ये मिला, अब मैं ये कर रहा हूँ वो सारी बातें उसने सुनाई। वाह भाई वाह माशाल्लाह। देखो ये 4 हफ्तों में बच्चों को 4 हफ्तों में ले जाते हैं, अल्लाह बहुत मुबारक फरमावे। और भाई कहाँ हो रहा है? और कहाँ हो रहा है? जो जिस स्कूल में जिस हॉस्टल में जो कुछ होता है वो जरा सुनाओ जी। अच्छा एक बात सुनो, अच्छा जरा जोर से, आप क्या पढ़ रहे हो, कहाँ हो? अच्छा अच्छा अच्छा, ये कह रहे हैं हमारे वहाँ 45 स्टूडेंट है और माशाल्लाह मस्जिद की तालीम में भी जोड़ते हैं। और ओ भाई ओ भाई ओ भाई इन्ना लिल्लाह, ऐसा नहीं करते अच्छे बच्चे, तो ऐसा नहीं करते। हाँ 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 माशाल्लाह, ये कह रहे हैं कि हमारे वहाँ मशवरा भी होता है और बच्चों में तालीम भी होती है और माशाल्लाह स्टूडेंट की भी मुलाकात होती है। सो माशाल्लाह भाई भाई ऐसा नहीं, बैठ जाओ आप, हंसो मत जी माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छा, लेकिन ये बहुत कम है। आप कोशिश करो, 30 दिन अपने इस खुराफात के माहौल में रहते हैं, इनको हर 15 दिन में एक मरतबा होना चाहिए इनकी फिक्र, ठीक है? कोशिश करोगे बहुत अच्छी बात। माशाल्लाह कह रहे हैं दिवाली के 10 दिन की छुट्टी थी, वो 10 दिन जमात में भी गए थे। ये एक जगह की जमात दूसरी जगह जाएगी, वहाँ के स्टूडेंट में हरकत आएगी, ये अच्छी बात है माशाल्लाह। तशरीफ रखें। और भाई किसी स्कूल में कई बार खड़े हो जाओ। ये कह रहे हैं हमारे वहाँ 35 बच्चे हैं। हाँ मगरिब बाद मशवरा करते हो और हाँ माशाल्लाह। ये कह रहे हैं कि बच्चे गश्त तो उनसे पढ़ाई में हर्ज तो नहीं होता। हाँ वो ठीक है, लेकिन बच्चों की पढ़ाई में हर्ज नहीं होना चाहिए। अच्छी बात माशाल्लाह। और माशाल्लाह वहाँ बैठा तशरीफ रखें, बहुत अच्छी बात, तशरीफ रखें। ये कह रहे हैं कि हमारे वहाँ बच्चे सारे काम में जुड़ते हैं, बहुत अच्छा है। हज़रत रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे, करने के काम करोगे तो न करने के बातों से बच जाओगे। बेकारी गुनाहों का दरवाज़ा है, जो आदमी बेकार रहता है वो गुनाह करता है, बेकारी गुनाहों का दरवाज़ा। भाई माशाल्लाह देखो इन्होंने कारदारी सुनाई, अब आप सब नियत कर लो हम सब ऐसा काम करेंगे। कौन कौन नियत करता है? एक तो हमारी नमाज नहीं छूटेगी और पढ़ाई इंशाल्लाह जी जान से मन से अच्छी पढ़ाई करेंगे। और अगर कोई पढ़ाई में सुस्ती करे तो आप उसकी फिक्र करो कि हमारा ये मुसलमान भाई सुस्ती नहीं होनी चाहिए, इसके अच्छे से अच्छी पढ़ाई हो, करोगे इसकी फिक्र? और अगर हॉस्टल वाले बच्चे हो तो कुछ वक्त तय करके हॉस्टल में तालीम करो, मुसलमान कैसा होता है उसकी ज़िंदगी उसको सुनाओ। ये जो फजाइल की किताब है ना उसमें मुसलमान की ज़िंदगी लिखी है, मुसलमान कैसा हो, उसमें 5 शोबों का दीन है, ईमानियात, इबादत, मामलात, माशरत और अखलाकियात। ईमानियात, फिर उसके बाद इस्लाम के 5 अरकान, ईमान, नमाज, रोज़ा, ज़कात और हज, इसके फजाइल सुनाए, फजाइल, क्योंकि हमारे वहाँ मसाइल उलमा से पूछने के होते हैं, फजाइल कि मुसलमान को ये अमल कैसे करना है वो। तीसरा मामलात, हराम का क्या है, हलाल क्या है, उसमें फजाइल सदकात में ना, हराम की गिज़ा क्या है। फिर माशरत, अम्मी कौन है, अब्बा कौन है, पड़ोसी कौन है, जानवर कौन है, रास्ते का क्या हक है, ये सबके हकूक़ है। फिर अखलाकियात, ये 5 शोबों का दीन, अगर मुसलमान में ये सुनाया गया ना तो इसके ये शोबे मजबूत होते चले जाएंगे। इसलिए रोज़ाना अहतमाम से किताब को सुनना है, करोगे इसकी फिक्र? और छुट्टी के दिन अल्लाह के रास्ते में गुजारो, और जब तुम्हारी पढ़ाई पूरी हो जाए तो एक मरतबा मजबूत अच्छे 4 महीने लगाकर फिर जॉब और सर्विस में जाओ ताकि तुम अच्छे बनकर जाओ। इसलिए सब नियत करो, जब पढ़ाई पूरी हो जाएगी तो 4 महीने जरूर जाएंगे, फिर उसके बाद जॉब और सर्विस पर जाएंगे। सब नियत करते हो, इस साल किसकी किसकी पढ़ाई पूरी हो रही है और किसकी पूरी हो रही है और तो आप सब नियत करते हो कि इस साल 4 महीने हम जाएंगे पढ़ाई पूरी करके, तो जरा खड़े हो जाओ। कौन कौन जाएंगे? खड़े हो जाओ, जल्दी जल्दी खड़े हो जाओ। वाह वाह माशाल्लाह, और खड़े हो जाओ, और खड़े हो जाओ, और खड़े हो जाओ। माशाल्लाह माशाल्लाह वाह वाह। अपनी अपने अपने यहीं से जमातें बनानी है इंशाल्लाह। आप सब मेरे पास आ जाओ, सब मेरे पास आ जाओ भाई, पीछे वाले मेरे पास आ जाओ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, सब मेरे पास भैया, डॉक्टर के पास आ जाओ, डॉक्टर के पास आ जाओ भाई सब। ओ भाई, ओ कुर्ते वाले, ओ नीले कुर्ते वाले, बैठ 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 बैठ, आ जाओ भाई आ जाओ। माशाल्लाह देखो ये सब किस साल पढ़ाई पूरी हो रही है, ये सब 4 महीने जाएंगे। वाह वाह माशाल्लाह, आ जाओ भाई जल्दी जल्दी आ जाओ भाई। ओ भाई इतना जल्दी मत जा, इतना जल्दी भाई आ जाओ। ओ भाई ऐसा ना कर, बैठ जाओ। इतना अच्छा होकर ऐसा करता है भाई, बैठ जाओ। तस्बीह का एक दाना टूटा तो पूरी तस्बीह टूट जाती है भाई। बैठ जाओ भाई। ओ फोन वाले बैठ जाओ। अच्छा भाई देखो माशाल्लाह भाई बैठ जाओ भाई, देखो ये तो इस साल पढ़ाई इनकी पूरी। और बच्चे ओ चश्मे वाले बैठ जाओ। अच्छा एक बात सुनो, माशाल्लाह देखो इनके इस साल तो पढ़ाई पूरी हो रही है, ये सब 4 महीने जाएंगे इंशाल्लाह। आप लोग भी नियत करो जब हमारी पढ़ाई पूरी होगी तो हम भी 4-4 महीने जाएंगे। बाकी जब तक पढ़ाई पूरी ना हो वैकेशन को इधर उधर नहीं गुजारना, इसको नेकी के कामों में लगाओ। इसके लिए वैकेशन में जिसकी 10 दिन की छुट्टी हो वो 10 दिन जमात में जाए, जिसकी 40 दिन की छुट्टी हो वो 40 दिन जाए। इस साल 40 दिन की किसकी किसकी छुट्टी होगी? और तो सब नियत करते हो। चलो हम आपके नाम नहीं लिखते, अल्लाह के फरिश्ते ने लिख लिए आपके। किसने लिख लिए बोलो? अरे बोलो किसने लिख लिए? तो अल्लाह के फरिश्ते ने लिख लिए, लेकिन जरूर करना। और तीसरी बात यह है कि अपने स्कूल के बच्चों की जरूर फिक्र करो, उन गांवों के बच्चे के जिन गांवों में मस्जिद भी नहीं है, मदरसा भी नहीं है, वहां का मुसलमान है, तो रोजाना 10 मिनट मुलाकात में फारिग करो और अपने स्कूल में जितने मुसलमान बच्चे हैं उनसे दोस्ती करो दोस्ती करके उनसे प्यार मोहब्बत से उनको करीब करो और ये सारे अमाल वो भी करने वाले बने उसकी उनकी फिक्र करो, ठीक है इंशाल्लाह। और अपने आप को गुनाहों से बचाने की कोशिश करो। जो आदमी गुनाह करता है वो अल्लाह की निगाह से गिर जाता है, और आज के माहौल में सबसे ज्यादा जो गुनाह हो रहा है वो मोबाइल से हो रहा है। इसलिए सब नियत करो कि इंशाल्लाह हम अपने आप को गुनाहों से भी बचाने की पूरी कोशिश करेंगे। देखो नेकी का काम करने में बड़ी देर लगती है और गुनाह एक मिनट में खराब कर देता है। जमजम का पानी होता है, जमजम का पानी किताबों में आता है, माओ जमजम लेमा शोरे बला, जमजम का पानी भूख के लिए पियो अल्लाह भूख खत्म करे, प्यास के लिए प्यास खत्म, बीमारी में कोई पिए तो बीमारी अल्लाह उसे खत्म करेंगे। इतना ताकतवर पानी, एक पेशाब का कतरा गिर जाए ना तो इसको कोई नहीं पिएगा, कि खराब करने में एक पेशाब का कतरा काफी है। तो बनने में बड़ी देर लगती है, बिगड़ने में देर नहीं लगती है। तो आज के माहौल में ये मोबाइल का रास्ता हमारे बिगड़ने का रास्ता है। इसलिए कोशिश करो कि हमसे बनने की मेहनत अच्छे से अच्छी हो जाए और दूसरी जो मेहनत है उससे हमारा बचना हो जाए। करोगे इसकी फिक्र इंशाल्लाह, कौन कौन नियत करता है करेंगे, और आइंदा कौन कौन अच्छे से अच्छी कारदारी सुनाएगा, स्कूल के मुलाकातों की भी, नमाज की भी, मुसलमानों पर मेहनत की भी और अच्छी पढ़ाई की भी, सब सुनाओगे, कौन कौन सुनाएगा, बहुत अच्छी बात। चलो ठीक है, ठीक है कटड़ी साहब, और कोई बात? अच्छा बस देखो, अब मगरिब के बाद वहाँ प्रोग्राम होगा, मगरिब से पहले अपनी जरूरत से फारिग हो लो और वहाँ मजमे में बयान में बैठो, और फिर वहाँ और भी स्टूडेंट आए उनसे पर भी मेहनत करो, ठीक है इंशाल्लाह। दुआ पढ़कर जाओ भाई, सुभान अल्लाह व बिहम्दिही, सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह।